वचन बोलना, ये वाणी की मलिनता, उसको भी हम संभाल सकते हैं। लेकिन मन की मलिनता, इस पर हमारा विचार हमारा उपाय बहुत कम बनता है। हम शरीर को निर्मल बना करके, साफ सुथरा बना करके अच्छे दिखने लगते हैं, चाहते भी हैं कि हम अच्छे दिखें, हमारा चेहरा गंदा क्यों दिखे? तो हम नहला धुला करके अपने शरीर को साफ सुथरा और सुंदर दिखने वाला बना लेते हैं। वाणी से भी हम लोगों के बीच बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत अच्छा हमारे मन में भले ही कैसा भी विचार हो, हम अच्छे ही वचन का उपयोग करते हैं। वचन का दरिद्रता, आचार्य भगवान का मिले था कि वचन बोलने में क्या दरिद्रता करनी चाहिए, बोले तो अच्छे ही बोले, तो हम वो भी करते हैं। इन दो मलिनताओं से तो हम बच जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे मन में जितनी निर्मलता आनी चाहिए वो नहीं आता। तमाम वायु क्रियाओं के बावजूद हमारे मन में जो पवित्रता और स्वच्छता होनी चाहिए वो नहीं है। प्रयत्न सारा उसी के लिए, चाहे साधु अपने जीवन में साधना करे या कि गृहस्थ अपने गृहस्थी चलाते हुए धर्म ध्यान करे, दोनों के जीवन का एक ही लक्ष्य, अपने उस मन की विशुद्ध अवस्था को, निर्मल अवस्था को प्राप्त करें। जितना भी बाह्य सरंजाम है, जितना भी बाह्य प्रयत्न है, उस सबका एक ही उद्देश्य कि जैसे भी हो मेरी चेतना जो निरंतर मलिन होती चली जा रही है वो पवित्र हो, विशुद्ध हो। क्यों सुबह से मंदिर में दर्शन करने आते हैं, क्यों भगवान के ऊपर जल की धारा छोड़ते हैं, क्यों अपने पास जो द्रव्य है उसे भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं, क्यों भागे भागे तैयार होकर के और महाराज के पीछे पीछे चले जाते हैं, एक ग्रास हाथ पर रखने में कौन सा सुख मिलता है, इन सब चीज़ों में क्या मिलता है? अगर ऐसा विचार करें तो मिलता है। वो मन की निर्मलता, वो उन क्षणों के लिए मन में जो पवित्रता आती है उसके लिए ये उपक्रम करते हैं, और यदि वो आना बंद हो तो फिर ये सब किया हुआ हमारा उपयोगी नहीं है। तब हमारा प्रयत्न क्या होना चाहिए? अपने लक्ष्य की तरफ हमारी दृष्टि रहे कि मैं जो भी कर रहा हूं उस सब के पीछे एक ही उद्देश्य, इसको थोड़ा सा और अपने घर तक बढ़ा लें। अभी तो मंदिर और धार्मिक कार्यों में मैंने अपने लक्ष्य को ये बनाया है कि मेरे मन में निर्मलता बनी रहे। काश हम ऐसे ही अपने परिवार में भी, अपने लोगों के बीच भी ऐसा ही विचार अगर बना लें कि घर गृहस्थी के 100 काम करते हुए भी मैं अपने मन की निर्मलता को खंडित नहीं हूँ, मैं अपने मन को मलिनताओं से बचाए रखूँगा, अगर ऐसा निर्णय ले लें तो यही ही मन की निर्मलता हमारे जीवन को ऊंचा उठाएगी। चाहे हम घर गृहस्थी में हों, चाहे साधना करके ग्रह का परित्याग करके और साधु बनकर, दोनों स्थिति घर में भी और हम एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते हुए, भगवान ऋषभ देव ने भी घर गृहस्थी करी थी, 24 में से 19 तीर्थंकरों ने करी थी, 5 ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, पर ये एक्सेप्शन है। भरत और ऐरावत के सारे तीर्थंकर विवाहित ही हो करके फिर दीक्षा लेते हैं। इसका मतलब है कि गृहस्थ के जीवन में भी धर्म स्थान हो सकता है। ऐसा ना सोचें हम कि हम तो सब कुछ करने के लिए मुक्त हैं। गृहस्थ के मायने हैं कि जो पाप में लिप्त है, ऐसी परिभाषा हम ना करें। गृहस्थी सिर्फ हमें पाप कार्य करने के लिए नहीं मिली है, गृहस्थी के मायने हैं कि मैं पापों को सीमित कर दूं, मैं पापों से बच जाऊं, इसके लिए गृहस्थी की जाती, वरना स्वच्छंद कहलाता है व्यक्ति। उस स्वच्छंद मन की प्रवृत्ति को सीमित करने की प्रक्रिया है गृहस्थ जीवन, और उस मन की प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाने की प्रक्रिया का नाम है साधु जीवन। इसलिए गृहस्थ में रह करके भी हम अपने मन की निर्मलता का उपाय कर सकते हैं, मुझे कहना यह है। 24 घंटे हम अगर एक ही ध्यान रख ले कि मेरा मन निर्मल है, कितनी चीजों से मन की निर्मलता को हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहली चीज, मन में उठने वाले विचार निषेधात्मक हैं या कि सकारात्मक हैं, दूसरे के हित करने वाले हैं या दूसरे का अहित चाहिए। सुबह से शाम तक एनालिसिस किया जा सकता है कि मेरे मन में सुबह से शाम तक आज कितने ऐसे विचार आए जिनमें कि मैंने दूसरे का जरा भी ख्याल नहीं किया, अपनी ही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहा, एक चीज, या कि मैंने दूसरे का ख्याल किया लेकिन द्वेषवश किया, उसके जीवन में अहित करने के लिए दूसरे का ख्याल किया। ऐसा भी ख्याल करते हैं अपन, दूसरे का ख्याल भी ऐसा करते हैं कि उसका मैं कैसे अहित करूँ, ऐसा भी होता है। या कि मैंने दूसरे का भला चाहने के लिए कितनी देर विचार किया, अपन पाएंगे कि दूसरे का बुरा चाहने वाले विचार से कम हैं हमारे जीवन में दूसरे का भला चाहने वाले विचार, और सबसे ज्यादा विचार हैं अपना स्वार्थ साधने का। देखें अपन तीन तरह की इन चीजों में से दूसरे का हित चाहने वाले विचार अत्यंत अल्प है, दूसरे का अहित चाहने वाले विचार और अधिक हैं, और सबसे अधिक हैं अपना स्वार्थ साधना के लिए दूसरे का चाहे जो। अब बताइए ऐसी स्थिति में क्या हमारा मन स्वस्थ और निर्बल रह पाएगा? नहीं, यही तो मन की मलिनता, इससे ज्यादा और कोई मलिनता है क्या? हम अपने भौतिक सुख सुविधाओं को जुटाने के राग में लगे हुए, राग से ग्रसित मन भी मलिन है, हम दूसरे का अहित चाहने में लगे हुए हैं हमारे विचारों में, तो ये द्वेष जनित मन की मलिनता है। अगर हम थोड़ा सा दूसरे का भला चाहते हैं और अपने आत्म कल्याण की दृष्टि से दूसरे का भला चाहते हैं, तब यह मन के ऊपर उठने का उपक्रम उपाय, मन को निर्मल बनाने का विधि। एक आइसक्रीम की दुकान पर एक 10 वर्ष का बेटा पहुंचा है। वहां टेबल कुर्सी लगी हुई है जिन पर बैठकर विभिन्न प्रकार की आइसक्रीम लोग खा रहे हैं, वह भी जाकर के टेबल पर बैठ जाता है। कोन मिलता है आइसक्रीम का कोन, उसकी अलग अलग कीमत, उनके अलग अलग टेबल। बेरा आकर के और ऑर्डर मांगता है उस 10 साल के बच्चे से भी, क्योंकि जो आया है वो तो सब ग्राहक है और ग्राहक से तो जो वहाँ का नियम है उसके मुताबिक ही बात करनी पड़ेगी, ये नहीं चलेगा कि आप कितने बड़े हैं या कि छोटे हैं, पैसे वाले हैं कि गरीब हैं। तो उस बच्चे से भी मैं पूछा तो उसने कहा कि बड़े कोन का कितना, तो बड़े कोन का 2 रुपया। एक बार वो सोचने पड़ गया, बहरे ने कहा कि क्या कम पैसे हैं तुम्हारे पास, छोटा वाला कोन चाहिए क्या? तो बोलता कि छोटे कोन के कितने पैसे, तो उसने कहा ज़्यादा फर्क नहीं है, 1.5 रुपये का होता। उसने कहा फिर ऐसा करो कि मुझे छोटा कोन ही। अब वो बड़े मुश्किल में है कि इतना छोटा सा बेटा है और कितने सोच में पड़ा हुआ है, अरे बड़ा वाला लेना तो बड़ा वाला ले लो। फिर भी थोड़ा झुंझलाया वो, पर ग्राहक की ना बिगड़ जाए तो जल्दी से छोटा कौन ला कर के ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। क्यों नहीं है? क्योंकि इस छोटे से बच्चे से मुझे क्या मिलने वाला, जितने का खरीदेगा उसका पेमेंट करके चला जाएगा, बड़े लोग आते हैं तो जरा टिप दे जाती है, कुछ ना कुछ उसके हाथ में भी आएगा, सर्व करने वाले बैगा के हाथ में भी आएगा। तो उसकी तरफ ज्यादा उसका कंसंट्रेशन नहीं था। हाँ, डेढ़ वाला लेना, डेढ़ वाला लो सर। और उसने छोटा वाला कोन आइसक्रीम का खाया। असल में उस बच्चे के पास 2 रुपए, वो चाहता तो बड़ा वाला कोन ले सकता, लेकिन उसने छोटा कोन 1.5 रुपए का लिया और छोटा कोन खा करके और प्लेट में जो रिवाज है वो 2 रुपए रख करके और उस करके निकल गया। जब वो बहरा वहां आया तो उसे तो 1.5 रुपए की आशा थी कि 1.5 रुपए यहां मिले, लेकिन जब 2 रुपए वहां मिले तब उसका मन भरा कि ये 2 रुपए का कोन भी खरीद सकता था। इसने पूछ करके कीमत मेरा ख्याल रख करके खुद 1.5 रुपए का कोन खाया, 50 पैसे मेरे लिए। ये बात उसके मन को छू गई। बहुत छोटी सी बात, लेकिन इससे ये डिसाइड हो गया कि वो 10 वर्ष का बेटा भी मन की निर्मलता का अभ्यासी है और हम शायद उससे बहुत नीचे। आया समझ में? ऐसी बातें कम आती हैं, देर से आती, जल्दी नहीं। ये कहानी किसके तक अच्छी लगती है? जीवन में ये घटित हो जाए तो और कितनी प्यारी लगेंगी, इसका ख्याल ही नहीं आता। जब ये कहानी में इतनी प्यारी मालूम पड़ती है और अपने जीवन में अगर ये कभी घटित हो जाए तो कितना आनंद आए, ये भर एहसास करने की। दूसरी चीज, हमारा मन होने वाली क्रियाओं का क्या रिप्लाई करता है, क्या हम क्रिया की प्रतिक्रिया करते हैं, इससे मालूम पड़ जाता है कि हमारा मन निर्मल है या कि मलिनताओं से है। हमें सुबह से शाम तक कुछ क्रियाएं भी करनी रहती, अपनी तरफ से करते हैं, और बहुत सारी तो हमें प्रतिक्रियाएं ही करना पड़ती हैं। किसी ने कुछ करा तो उसके अगेंस्ट, या किसी ने कुछ कहा तो उसका रिप्लाई, इसमें हमारा बहुत सारा समय लेते हैं और हम उससे बच भी नहीं पाते। हमें प्रतिक्रिया तो करनी ही चाहिए। वैसे तो साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि हम लोग क्रिया बहुत कम करते हैं, हमारा पूरा दिन प्रतिक्रियाओं में ही गुजरता है। अब कहां तक सही है तो अपन अपना अपना अनुभव। अपन कोई एक्शन नहीं करते, अपन तो सिर्फ रिएक्शन करते हैं। तो वैसे शाम तक है तो बात कुछ हद तक तो ठीक मालूम पड़ती। तो अब जब हम रिएक्शन ही करते हैं, प्रतिक्रिया ही करते हैं, तो क्यों ना हम अपनी प्रतिक्रिया को जरा गौर से देखें कि वो प्रतिक्रिया दूसरे के लिए हार्मफुल है या कि हेल्पफुल है, और वो हमारे अपने लिए भी हार्मफुल है कि हेल्पफुल है। दोनों संदर्भ में हम विचार करें तो हम देखेंगे कि हमारी बहुत सी प्रतिक्रियाएं हमारे और दूसरे के बुरे में ही कारण बनती हैं। बहुत थोड़ी सी प्रतिक्रियाएं हैं जिनसे कि हम अपने मन को स्वस्थ और प्रसन्न रख पाते हैं, या हमारी प्रतिक्रिया से दूसरा भी उत्साहित और प्रसन्न और निर्मल हो जाए। बड़ा आसान सा काम नहीं है। अपन को ये ध्यान ही नहीं रहता प्रतिक्रिया करते समय कि सामने वाले का मन मलिन तो नहीं हो जाएगा, प्रसन्न होगा कि नहीं होगा। मेरा मन इस बात को कहते समय तो ही प्रसन्न है, बाद में अपनी इसी बात से मुझे मेरे मन में है और दुख तो नहीं होगा। होता बहुत अभ्यास चाहिए इसके लिए। मैं इस चीज को अनुभव करता हूँ। अपन कोई भी बात कह चुकते हैं, प्रतिक्रिया कर चुकते हैं, बाद में सोचते हैं कि अरे ये ठीक है, फिर मन बड़ा दुखी और सामने वाला भी अपनी उस प्रतिक्रिया से अपने मन को मलिन कर लेता है। बताइए, दोनों का ही लॉ। ये सावधानी अपने जीवन में यदि हम सीख सकें कि प्रतिक्रिया हमें कैसी करनी है, तो संभव है कि हम बुरी प्रतिक्रियाओं से बच करके अच्छी प्रतिक्रियाएं अपने जीवन में करने का और एक संकल्प भी ले लें कि जब मुझे प्रतिक्रिया करनी ही पड़ती है तब मैं जरा सोच विचार के करूंगा, चाहे शरीर से कोई प्रतिक्रिया करूं, चाहे मन से करूं, चाहे वाणी से करूं, मैं हर प्रतिक्रिया को संभाल करके करूँगा। तो संभव है कि हमारा मन स्वस्थ और प्रसन्न रहा है। रामदास का उदाहरण मैं कई बार देता हूँ। उनको किसी के खेत में गन्ना खा लिया तो उस खेत वाले ने उनकी गन्ने से ही पिटाई कर दी। शिवाजी के तो गुरु थे वो, तो शिवाजी को जब मालूम पड़ा तो सजा देने के लिए उस किसान को बुला लिया। किसान ने कहा कि गलती तो हुई, पर रामदास ने कहा कि गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने उसके खेत से गन्ना चुराया। उसने मुझे मारने के लिए नहीं मारा, मैंने गन्ना चुराया इसलिए मारा। अगर शिवाजी तुम इसको दंड देना चाहते हो तो इसको 5 गांव दे दो दंड पर। उन्होंने कहा ऐसा कोई पनिशमेंट होता है? तो उन्होंने कहा कि एक गन्ना किसी का खा लेने पर वो क्यों मारेगा? अगर उसके पास बहुत सारे गन्ने होंगे तो ये गरीब आदमी है, इसकी उसके लिए एक गन्ना भी बहुत कीमती, इसको 5 गांव दे दो, जरा अच्छे से सुखपूर्वक रहेगा तो फिर आराम से किसी को भी और खूब सारी चीजें दे सके। ये भी एक प्रतिक्रिया का ढंग है। दूसरा ढंग, शिवाजी के पास ही एक बहन पहुंच गई और हाथ जोड़ के कहा कि एक निवेदन करना चाहती। बोलो। आपके जैसे पुत्र की आकांक्षा है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं। इसका एक अर्थ ये है कि आपका जैसा पुत्र तो तब होगा जब आपके साथ में गृहस्थी बनाओगे, एक अर्थ ये भी हो सकता है। और सबने वही अर्थ लिया कि ये सीधा सीधा गृहस्थ जीवन के लिए निवेदन कर रही है कि मैं आपके साथ ब्याह करूं और आपके जैसे पुत्र को प्राप्त करूं, सीधा सीधा। लेकिन शिवाजी ने एक क्षण भी नहीं गंवाया और सिंहासन से उठ करके नीचे आकर के अपने से भी कहना चाहिए वो थोड़ी बहुत अंतर की होगी और बड़ी होगी, और जा करके पैर छू लिए और कहा कि माँ आप मेरे जैसा बेटा चाहती हैं तो मैं ही आपका आज से बेटा हो गया, यही ना आप चाहती। एक प्रतिक्रिया ये। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह की प्रतिक्रिया। उधर लक्ष्मण जी से पूछा जाता है कि ये आभूषण पहचानते हो? वो कहते मैं तो इनको पहचानता नहीं हूँ, बहुत देखने के बाद नूपुर पहचानते हैं जो पैरों में पहने जाते हैं, ये क्यों पहचानते और आभूषण क्यों नहीं पहचानते? मैंने कभी अपने भाभी को पूरा दृष्टि डाल करके देखा ही नहीं, हमेशा उनके चरणों में झुकता था सुबह से, तो उतनी ही दृष्टि मेरी रही, उतना ही मुझे मालूम है कि ये नूपुर तो उन्हीं। अब देखिएगा आप किस तरह से हर एक चीज को सोचते हैं, हर एक चीज की प्रतिक्रिया क्या करते हैं, एक्शन आपका क्या है, इससे निर्भर करता है कि मन कितना स्वस्थ है। और फिर आगे बढ़ करके हमारे मन को निर्मल बनाने के लिए प्रतिक्रिया ही नहीं, फिर हमारी अपनी प्रवृत्ति क्या है। हम आलसी प्रवृत्ति के हैं या कि कर्मठ प्रवृत्ति के, इस पर निर्भर करता है। मन उसका निर्मल होगा जो कर्मठ होगा। आलसी व्यक्ति अपने मन को निर्मल भी बनाए। और चौथा कदम है, वो कहते हैं कि अगर मन को निर्मल बनाना है तो देखना पड़ेगा कि हमारे मन में निर्णय लेने की क्षमता कितनी है। जल्दी निर्णय लेते हैं या देर से निर्णय लेते हैं, या हमेशा अनिर्णय की स्थिति में बने रहते हैं। स्वस्थ मन वाला अपने जीवन में जल्दी निर्णय लेता है। जल्दी का मतलब हड़बड़ी में नहीं, ठीक निर्णय लेता है, जल्दी लेता है। पोस्टपोन करते रहना, कर लूंगा कर लूंगा, ये आलसी बने का काम। और हमने कुछ सोचे ही अपने जीवन के बारे में, लापरवाही में बीत रहा है, हमने कुछ सोचे नहीं, कर लेंगे देख लेंगे, ये अनिर्णय की स्थिति। ऐसा मन कब क्या कर गुजरेगा कहा नहीं जा सकता, कुछ भी कर सकता है, अनिर्णय है। जो चीज समझ में आ जाएगी वो कर लेंगे। हमें अपने मन को बात कर्मठ बनाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि मैं किस मामले में कर्मठ बनूं। मैं अपने जीवन को अच्छा बनाने का निर्णय तुरंत ले पाता हूं कि नहीं ले पाता, या कि अनिर्णय की स्थिति में, और या कि निर्णय को पोस्टपोन करने की स्थिति में मैं अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। ये इतनी बात अपन को ध्यान में रखना। ये सब जो है वो एक गृहस्थ के जीवन में भी आसानी से की जाने वाली चीजें हैं। यदि सिर्फ स्वस्थ मानसिकता को ही डिसाइड करने वाली चीजों पर अपन ने चर्चा करी, इसके बाद कह रहे हैं कि मन को स्वस्थ बनाने के लिए मानसिकता स्वस्थ होनी चाहिए, लेकिन इंद्रिय संयम, अच्छी संगति, श्रद्धा, भक्ति और प्रेम, ये तीन चीजें और उसके साथ हैं। कठिन तो नहीं होगा मामला, ज्यादा कठिन नहीं है। ये सब चीजें एक्सप्लेन करने में जितनी कठिन लगती हैं उतनी जीवन में घटित होने में कठिन नहीं। कई बार अपन को ऐसा लगता है कि एक्सप्लेनेशन आसान है, जीवन में करना कठिन है, लेकिन मैं आज उसकी ठीक विपरीत चीज कह रहा हूं। ये चीजें एक्सप्लेन करने में जितनी मुश्किल मालूम पड़ रही हैं, अगर हम एक बार मन बना लेते तो ये सब चीजें बहुत आसान होती होंगी। तब तो इनका एक्सप्लेनेशन हुआ है, ये इतना इस बारे में विचार हुआ, इसका मतलब है कि ये किया जा सकता होगा, तब तो विचार किया जाएगा और आसानी से किया जाएगा। इंद्रिय संयम के मायने क्या है? कठिन सी चीज नहीं है। हमारे चारों तरफ आंख से देखने वाली, नाक से सूंघने वाली, कान में आवाज करके सुनने वाली, जिह्वा से चखने वाली, छू करके जाने जाने वाली, इतनी चीजें तो हैं। पांच ही प्रकार की वस्तुएं तो हमारे हैं जिनको हम छू करके, चख करके, देख करके, सुन करके, सूंघ करके और उनके बारे में ज्ञान हासिल कर लेते हैं। लेकिन इनका ज्ञान हासिल करना बुरा नहीं है, इन सबके प्रति संवेदनशील होना बुरा नहीं है। सिर्फ इतना है कि मैं इनमें गाफिल ना हो, और मैं हो जाता हूँ गाफिल। मैं चीज को देखने की है तो देखूं, लेकिन मैं हो जाता हूँ देखते देखते उसमें राग करने लगता हूँ या कि द्वेष करने लगता हूँ। यहाँ मेरा मन गड़बड़ा जाता है, और बिल्कुल नहीं, चीजें मुझे गड़बड़ाती हैं ऐसा नहीं। चीजों के प्रति मेरा जो राग या द्वेष का भाव है वो मेरे मन को गड़बड़ा देता है। इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रिय संयम रखना। इंद्रिय संयम रखना मतलब क्या? आंख पर पट्टी बांधना, यदि जो जो चीजें आंख से देखने वाली उन सबको हटा के आ जाना कहीं पर फेंक करके, कैसे करेगा वो? तो आंख खोलेंगे भी देखेंगे। जब बुद्ध के बिहार में, गौतम बुद्ध के आश्रम को बिहार बोलते हैं बौद्ध दर्शन में, जैसे आश्रम बोला जाता है वैसे उसको बिहार बोला जाता है। वहां पर वैशाली की नगर वधू थी आम्रपाली, वो आने वाली थी, अत्यंत सुंदर रूप जिनका, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कि उन्हें देखने के लिए उत्सुक ना हो, जैसे कि कोई आज नेता वगैरह आ जावे तो सब देखने के लिए चले नहीं, ऐसे उनके वहां पर बौद्ध भिक्षुओं के मन में भी उनके देखने की। पर आदेश ये जारी हुआ कि देवी आम्रपाली जब बिहार में आए तब सब भिक्षु अपनी आंख नीचे रखे। इस तरह के बनाए गए बंधन जीवन को ऊंचा नहीं उठाते, ये ध्यान रखें। और वही हुआ, जितना उन्हें ये कहा गया था कि आंख ना उठा करके देखें, उतना उनके मन में और अधिक इच्छा जा रही। तो फौरन भिक्षुओं ने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा कि ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आंख ना उठाएं, पर अगर बाई चांस बहुत अधिक देखने की चेष्टा ही मत करना, दिख जाए तो कोई मना ही नहीं, आप अपनी तरफ से देखने का प्रयत्न करें। अब दूसरी कसमा साहब कि दिख जाए बाई द वे, नहीं दिख पाई तो हम तो कोशिश करके देखेंगे। देखिए जितने रिस्ट्रिक्शन होंगे उतना ज्यादा उन रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट में जाने की इच्छा होगी, मन की प्रवृत्ति है। आप जितना बेटे को कहोगे देखो मां पर नहीं जाना, तुम बता दिया मैंने, ठीक है नहीं जाना, आप तो जाओ जरा इधर उधर, फिर तो हम वहीं जाएंगे। वैसे हम नहीं जाते, आप अगर मना नहीं करते तो नहीं जाने वाले, लेकिन आपने मना किया तो जरूर से वहीं जाएंगे। अब जब फिर भिक्षुओं के तरफ से पहुंचा रिप्रेजेंटेटिव कि भाई किसी के देखने की इच्छा हो अगर तो
अब बुद्ध भी मुश्किल में पड़े। उन्होंने अंतिम आदेश जारी किया कि मेरे दोनों आदेश मैं वापस लेता हूं। भिक्षुओं को सिर्फ एक ही आदेश है कि देवी आम्रपाली आए, देव उन्हें देखना चाहें तो खूब अच्छे से देखें, पर ध्यान रखें अपने मन को संभालें, आसक्त भरना हो और कोई दिक्कत नहीं। पांचों इंद्रियों के विषयों के कॉन्टेक्ट में हम आएंगे, इसके बाद भी वे पांचों इंद्रिय के और मन के विषय मेरे मन को मलिन ना करें, वे मेरे मन को उज्जवल बनाए रख सकें, इतनी ही साधना है और कुछ भी नहीं। भगवान जिनेन्द्र की भी के भी दर्शन करते हैं, अत्यंत वितराग भाव से युक्त हो जाते हैं, अपनी बहन की तरफ दृष्टिपात करते हैं, अत्यंत स्नेह से भर जाते हैं, अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरने की इच्छा हो जाती है, उससे प्यार करने की इच्छा होती है, माँ को देखते हैं तो माँ के चरणों में प्रणाम करने और श्रद्धा से हृदय भर जाता है, सब में पवित्रता है। लेकिन कहाँ है जहां की मैं चूक जाता हूं, बस इतना ही सा ध्यान रखना और कुछ नहीं करना। मैंने पांचों इंद्रियों के विषयों से ऐसे संबंध निर्मित करके रखे हैं, मैं चाहूं तो उन्हीं से अपने मन को उज्जवल बना लेता हूं और मैं चाहूं तो उसी से अपने मन को मलिन कर लेता हूं। बताइएगा अब मुझे करना क्या चाहिए? मुझे अपने मन को संभालना चाहिए, मुझे अपने मन इन इंद्रिय के पंचेंद्रिय के विषयों को मैं संभालते फिरूं, मुझे अपने मन को संभालना। आपको मदास की घटना याद है? राजा मिदास, इंग्लिश में नाम है उनका, MIDA कुछ इस तरह का है, मिदास। अब वो एक बार उनके मन में आया, उनको सोने की बड़ी ललक रहती थी कि मेरे पास में धन पैसे के लिए सोना बहुत हो। सब बच्चों ने कहानी पढ़ी होगी, बड़े लोगों ने भी पढ़ी होगी, जब बच्चे रहे होंगे तब रहे होंगे बच्चे, एकदम बड़े लोग नहीं गए होंगे तो सबने पढ़ी होगी वो राजा मिदास। उसकी एक बहुत प्यारी बेटी थी, उससे वो बहुत प्यार था और उसको ये था कि मेरी बेटी के लिए मैं बिल्कुल सोने से लाद दूंगा, मेरे पास इतना सोना होना। और उसने पता नहीं क्या हुआ उसकी अपनी पूजा अर्चना के द्वारा और देवता को खुश कर लिया। जब देवता ने कहा कि मांगो वरदान, तो उसने कहा कि वरदान देते हो तो एक ही वरदान की, मैं जिस चीज को छूं वो सोने की। सोना अच्छी चीज है लेकिन खाने से बड़ी चीज नहीं है, खाया नहीं जा सकता, पहना जा सकता, ओढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन बस जो भी टच करूं वो सब सोने का हो जाए। बड़े खुश जनाब, कॉफी हाथ में उठाई, सोने की हो गई। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन जब चौके में जाकर के थाली पर बैठे तो सामान छुआ तो वो सोने का हो गया। अब मुश्किल, अब खाएं क्या? बड़े परेशान। एक दो दिन व्यतीत हो गए, उतने में ही जो है कहीं चली गई थी वो बेटी, वो वापस आई, बड़े व्यथित होकर के भागे भागे कि मेरे साथ ये क्या हो गया, और उसको गोद में उठाया तो वो भी सोने। अब अत्यंत व्यथित। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, हम लोग भी ऐसे ही व्यथित होते हैं पांचों इंद्रियों और मन के विषयों को प्राप्त करने के बाद। जब तक प्राप्त नहीं हुए थे तब तक ही लालसा, फिर प्राप्त हो जाते हैं तो बोझ मालूम पड़ने लगते हैं। सबका अनुभव है, अकेला हमारे ही, आपका भी अनुभव है। ये बात अलग है कि आप अपने अनुभव का लाभ नहीं उठाते। अब जाकर के देवता से बहुत प्रार्थना करता है वो कि वापिस ले लो अपना वरदान, मैं जैसा था वैसे ही मैं ठीक। बस इतनी सी घटना, हम जैसे हैं वैसे ही क्यों नहीं हो जाते? हम क्यों इन पांचों इंद्रियों और मन के विषयों को अपने चारों तरफ जोड़ करके अपने को बहुत बड़ा मान लेते हैं? नहीं, ये चीजें मेरे लिए सिर्फ मदद करने वाली हैं, इनका सदुपयोग करूं और आगे बढ़ जाऊं, इनमें आसक्त ना हो, ना इनसे द्वेष करूं, ना इनको चिपकाए फिरूं, ना इनको भगा हटाए फिरूं, बस दोनों चीजें, ना मैं चीजों से चिपका रहा हूं ना मैं चीजों से द्वेष करूं, दोनों में अगर हम समान रहना शुरू कर देते तो इंद्रिय विजय कोई बात नहीं। और अच्छी संगति, सब समझते हैं कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा महत्व इस चीज का है। पानी धूल में गिरता है तो कीचड़ बनता है, नीम के पेड़ में गिरता है तो खड़वाहट लाता है, और गन्ने में गिरता है तो मीठा हो जाता है, और अगर वो सीप में गिर जाए तो मोती बन जाता है। सब जानते हैं, रटा हुआ उदाहरण है बिल्कुल एकदम। लेकिन जीवन पर जिस दिन घटित हो जाए कि मैं भी जिस तरह जिसके सानिध्य में रहूंगा वैसा ही हो जाएगा मेरा मन, मेरी चेतना, तब फिर मुझे मलिनताओं से बचना चाहिए, बाहर की मलिनताओं, मेरे अंतरंग को संभालने के लिए मुझे जहां मलिनता मुझे लगने लगे ऐसा साहित्य, ऐसे मित्र। आज अपन देखें तो पंचेंद्रिय और मन के विषयों की आसक्ति से भरे हुए मित्र
हंसी मजाक करने के लिए मित्र बहुत जल्दी मिल जाएंगे, इंटरटेन करने के लिए कोई कल्याण मित्र मिलता है जो हमारे आत्म कल्याण के लिए हमें प्रेरणा दे सके? ऐसी संगति है, ऐसी मित्रता, ऐसी दोस्ती है? अगर है तो फिर निश्चिंत हो जाइएगा, अब हमारा जीवन जरूर से अच्छा बनने के लिए बिल्कुल कहना चाहिए तैयारी हो गई हमारी, हम अच्छे बन जाए। इस तरह यदि हम अपने जीवन में इन सब बातों का थोड़ा सा विचार करें, और आखिरी चीज श्रद्धा, प्रेम और दया, ये सारी चीजें भी हमारे मन को बहुत निर्मल करती हैं। बहुत दिन से मेरा मन है कि मैं आपको वो घटना सुनाऊं, आज आराम से इतवार मना रहे हैं अपन, ठीक है ना, सुनाए देता हूँ घटना, फिर बाद में क्या पता। वैसे तो 2 मिनट बाकी रहे 10 बजने में, और उस घटना में कम से कम 15 मिनट लगेंगे, सोच लो आप एक बार। अच्छा, जबकि मैं सुनाऊंगा ही, मुझे पक्का है, पर आपसे ऐसा कह रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं कि मैं भल आपके लोगों के लिए सुनना था, ऐसा कहोगे भी नहीं आप। बहुत दिन से सोच रहा था कि वो सुनाऊंगा, पिछले 2 इतवार को भी मैं मिस कर गया, छूट के आता था और फिर कुछ और प्रक्रिया शुरू हो गई तो छूट। है ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी मन को छूने वाली। हमारे मन में जो श्रद्धा, प्रेम और करुणा है, जो हमारे मन की उज्ज्वलता है, ये सब उज्ज्वलता है। जितनी श्रद्धा है उतनी उज्ज्वलता, जितना प्रेम, जितनी करुणा, जितनी दया, उतनी उज्ज्वलता है मन में। वो ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती, थोड़ी रहती है, अगर ज़्यादा देर तक रह जाए तो फिर देखिएगा कितना चित्त निर्मल हमेशा बना है। तो एक किसान था गाँव में, उसके गाय बहुत सुंदर गाय, बहुत अच्छी है, वो उसको बहुत प्यार करता था, उस गाय को उसका पूरा ध्यान रखता था। भले ही स्वयं के खाने के लिए अच्छी चीज ना हो, पर उसके खाने के लिए अच्छी से अच्छी चीज इतना ध्यान। अब एक ऐसा मौका आ गया कि स्वयं के खाने के लिए भी और गाय के खिलाने के लिए भी, अकाल की स्थिति आ गई, कुछ बचा ही, फसल हुई। उसने सोचा कि अब किसानी छोड़कर के क्या मजदूरी करनी पड़ेगी, किसान आदमी को मजदूरी पसंद नहीं होती, ये तो अपन लोग हैं जो नौकरी पेशा वाले लोग, जॉब जॉब कहता था वो, जॉब हाँ बड़ा मालूम माना जाता है वो, उनके अंदर इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसान के अंदर गाय की नौकरी, गाय की मजदूरी, दूसरे की बजाना, अपना मेल पर खड़े होकर के बहलाता खेत देखना, दूसरे की फैक्ट्री क्या देखना, दूसरे की मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन जाओ आप तो कहलाओगे तो नौकरी। वो अच्छा शब्द बना लिया है अंग्रेज लोगों ने, अंग्रेजी में अच्छा शब्द बना लिया, तो लग मैनेजिंग डायरेक्टर और तो बड़ी पोस्ट, बड़ी पोस्ट है, लेकिन है तो दूसरे के मातहत नौकरी करना पड़ रही है, सेवा बजानी पड़ेगी। वो किसान बहुत मजबूरी में कि अब क्या करें, मैं अपने खाने के लिए तो पानी पी के रह जाऊंगा, लेकिन इसके लिए क्या करूं, इसको खाने के लिए नहीं मिलेगा। जब मजबूरी में, और उसने सोचा कि कर लेते हैं मजदूरी, कर लेते हैं पास के शहर में जा करके, और उसने काम ढूंढा एक खेत के यहाँ पर, जो 10 किलो दूध देती है, 500 रुपये हमने 500 रुपये बहुत होती है। तो फिर जी ने कहा बहुत सस्ती है, हम तो ज़्यादा महंगी सोच रहे थे, तो ले आना था, ले अपनी गाय को लेकर के आया। अब गाय के गले की रस्सी जैसे ही खेत को सौंपने लगा, तब भी खड़ा है, बहुत मन को कचोट रहा है। और जब गाय के गले की रस्सी सौंप दी तो गाय ने ऐसे देखा कि जैसे कह रही हो कि मुझे बेच दिया दूसरे के हाथों में, अब तो उसे और ज्यादा तकलीफ हुई। उसने कहा कि फिर भी मैं चौकीदारी की जगह पर ये काम कर लेता हूँ कि गाय की सेवा किया करूँगा, मुझे आप ग्वाला समझ करके गाय का मैं दूध निकाल दूंगा मैं, लेकिन फिर भी तैयार नहीं हूँ, उनको ऐसा दूसरा चौकीदार कहाँ लगेगा, ईमानदार
उन्होंने कहा नहीं, वो तो जो हमने लगा रखा है गाय का काम करने वाला वो ही करेगा। ठीक है, मजबूर होकर के और उसके सिर पर हाथ रख के कहा कि बहन मेरी मजबूरी समझो, जाओ इनके साथ, हमने तुम्हें इनको दे दिया है। गाय ने अपनी भाषा में स्वीकार करते हुए कहा कि ठीक चली गई, अभी तक तो नहीं जा रही थी। जैसे ही उसने इतना कहा, सिर पर हाथ रखा, चली गई। लेकिन अब जैसे ही दूध लगाने की बात आई तो उसने लगाने नहीं, कोई और को कैसे वो दूध लगाने दे, लात मार दी, आधा धोधा थोड़ा बहुत बहुत मार पीट करके पैर बांध करके लोगों ने निकालने की कोशिश की तो थोड़ा बहुत निकला, कहाँ 10 किलो की बात थी, वो तो आधा सेर भी नहीं थी। सेठ जी ने फौरन बुलाया, अरे तुम कैसी देगी झूठी बोलते, कहते थे 10 किलो देती, आधा किलो भी नहीं लिया, लाओ। बाई की लाई गई, उसने निकाल करके 10 किलो दूध दे दिया और फिर उसके सिर पर हाथ रख के कहा कि बहन मेरी लाश तुम्हारे हाथ में, थोड़ा मेरा भी विचार करो, ऐसे कब तक काम करें। और फिर वो निश्चिंत होकर के अपने चौकीदारी करने लगा। पर 2-4 दिन में फिर वो ही शिकायत कि गाय दूध नहीं देती, देती तो कम सी देती। और एक दिन तो ऐसा हो गया कि गाय अपने स्थान से छूट करके और जहां वो चौकीदारी से भी बैठा करता था वहां पर जाकर के सारा दूध गिरा करके वापस आया। अब तो चौकीदार को पकड़ा गया कि लगता है हो ना हो ये गाय तो दूध देती होगी, पर ये चौकीदार रात में निकाल लेता होगा, इतनी कमजोर है। अब एक और नहीं, अब क्या करे वो अकेले में चुपचाप जाकर के गाय के पास खड़ा हो गया कि बहन मैंने कहा था कि मैंने तुम्हें कुछ रुपयों में अपने मालिक को बेच दिया है, तुम्हें मेरी लाज रखनी चाहिए। कहते हैं ये जैनेन्द्र कुमार ने कहानी लिखी है, उसमें लिखा उन्होंने कि कहते हैं कि उस दिन गाय मनुष्य की आवाज में बोली। वैसे तो मनुष्य भी मनुष्य की आवाज में नहीं बोलता, पशु मनुष्य की आवाज में बोल देता। प्रेम की आवाज सबके समझ में आती है भैया, चाहे वो पशु हो जाए और चाहे देवता हो। समय तो उसका यही होता है। और तब उसने मालूम क्या कहा कि मुझे बेचने की कुछ पैसों की बात वो तुम जानो, तुमने मुझे बेच दिया तो मेरे शरीर पर उनका अधिकार है, लेकिन मेरे दूध पर तो जिसका मेरे प्रति प्रेम है उसका ही अधिकार है, और मैं किसी और को अपना दूध तुम्हारे सिवाय दे नहीं सकती, इसके लिए मुझे मजबूर मत करो, मेरा पूरा शरीर तुमने 500 रुपए का बेच दिया, मेरी भावनाएं तो उनका तो सौदा हो नहीं सकता, रुपए और सौदे की तुम जा। कहते हैं कि उसी क्षण और खूटे से छोड़ करके गाय को और शेष के चरणों में माथा रख करके कि 500 रुपए आपके ये लो, ना मुझे आपकी नौकरी करनी है, ना मुझे अपनी गाय देनी है, मैं जैसा होगा इसका पालन पोषण करूंगा, अपने 2 जून का भोजन कमा लूंगा, जा। और वो वापस लौटा अपने गांव। मुझे इसमें आपसे कुछ नहीं कहना, सिर्फ इतना ही कहना कि श्रद्धा प्रेम और ये भावनाओं के संबंध भी हमारे मन को बहुत निर्मल और बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए शायद मन की निर्मलता के लिए एक उपाय ये भी है कि मन अधिक से अधिक श्रद्धा प्रेम और अच्छी भावनाओं से हमेशा बना रहे, तो ऐसा मन ही निर्मल मन कहलाएगा। इसी भावना के साथ कि हम सब इन सब बातों से अपने जीवन को अच्छा बना सकें। बोले आचार्य गुरुवर विचार सागर आज एक साथ बैठ करके नमोकार कर लेते हैं, इसी भावना से हमारा जीवन अच्छा है। ओ
तिलक पहना भगवा वाला, मन में अपने पाप का तू बुनता है ताना। ढोंग दुनिया के मैं सारे ढोंग बताता हूँ, सुन ले तारी आज पते की बात।